असल बात है कि इकोनॉमी की बड़ी बुरी हालत है अभी। पॉवर्टी लेवल नाउ इज 40-45%। अनफॉर्चुनेटली ये काफी डायरेक्शनलेस बजट है कि जो सैलरीड क्लास है, जो अर्बन मिडिल क्लास है, उन पर टैक्सेस और लगा दिए गए। द पीपल हु हैव द एबिलिटी टू मैनिपुलेट द गवर्नमेंट थ्रू पॉलिटिकल पावर, उन पर आप टैक्स नहीं लगाते हैं। हम लोग ने रेंट सीकिंग इंटरनेशनलाइज कर दिया। हम लोग के पास नहीं है कैपेबिलिटी अगले 3-4 साल इंतजार करने की। यू आर सकिंग आउट द मनी आउट ऑफ द सिस्टम। पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजिशन टू ग्रो एट 6-7% फॉर द नेक्स्ट 4-5 years at least. At some point, they default anyway.
خواتین حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. آج ایک تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا ماڈل تھوڑا سا شفٹ ہو گیا، اب ہم ڈیجیٹل فرسٹ ہونے جا رہے ہیں. لیکن آج ہمارے ساتھ موجود بھی ایک بڑے خاص مہمان ہیں جو کہ آئی بلیو دو دفعہ پہلے آ چکے ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ جاوید بھائی.
ویری مچ سو، یو ہیو بین ویری کائنڈ ٹو انوائٹ می ٹوائس.
اینڈ ناؤ آج کل کیونکہ اکانومی کا چرچا چل رہا ہے پورے پاکستان میں، کل بھی ہماری ایک ایپیسوڈ آئی تھی ٹرائنگ ٹو میک سینس آؤٹ آف دا کرنٹ بجٹ. لوگ بڑے پریشان ہیں، سیلریز کے اوپر جو ہے ٹیکسز بڑھ گئے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے آلریڈی بائنگ پاور جو ہے وہ کافی حد تک ایروڈ ہو چکی ہے. تو لوگ ظاہر ہے دے آر ٹرائنگ ٹو میک سینس آؤٹ آف کے پاکستان میں آنے والے وقت میں کیا ہوگا، جو اکانومی ہے وہ کس طرف جائے گی. انفارچونیٹلی ان کو کوئی سیریس سینس آف ڈائریکشن نہیں مل پا رہی، جس کے لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو بلاؤں تاکہ آپ تھوڑا سا بتا سکیں. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دی شو.
تھینک یو فار ہیونگ می آن.
میں تھوڑا سا بیسک سے اسٹارٹ کرتا ہوں. جسٹ وانٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ ڈو یو سی دی اسٹیٹ آف دی اکانومی رائٹ ناؤ. اس وقت کیا صورت حال ہے پاکستان کی اکانومی کی؟
مزمل بھائی، تھینک یو فرسٹ فار انوائٹنگ می اینڈ allowing me to air my views. اصل بات ہے کہ اکانومی کی بڑی بری حالت ہے ابھی، اور آپ عام عوام کے بارے میں سوچیں، ان کو کیا چاہیے؟ ان کو کوئی خاص لگژریز نہیں چاہیے. وہ پراڈوز نہیں خریدتے ہیں، وہ لگژری ہاؤسز نہیں خریدتے ہیں، وہ انٹرنیشنل نہیں ٹریول کرتے ہیں. وہ بیسک چیزیں چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آرام سے 3 وقت کا کھانا کھائیں، چھت ہو ان کے، اور کچھ کپڑا پہنے اور تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ ہو. اب یہ ہے کہ پہلے تو غریب غربا جو تھی، جو احساس کی بی آئی ایس پی کی جو کیٹیگری تھی، دا باٹم سارٹ آف 10-15%، وہ تو ہمیشہ سے ان کی بڑی بری حالت تھی. سو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ موسٹ آف اس آلموسٹ ٹینڈڈ ٹو اگنور دیم. بٹ دا نیکسٹ 20-25% ان کا بھی اب بہت ہی برا حالت ہو جا رہا ہے. تو اب پاورٹی لیول ناؤ از گون اپ ٹو 40-45%. ناؤ آئی وڈ سے جو بٹوین 40% of the population to up the next 75-80%, they are also basically precariously poor. They are one event away ke wo poverty line mein aa jaye. And poverty line ka ye matlab ki aap bachcho ko school nahi bhej sakte hain, aap ek waqt se zyada khane se sochte hain, aap apki quality of khana jo hai usme nutritional value kam hoti ja rahi hai. Aur hum log iska dekh rahe hain, hum log on the street dekh rahe hain. غربت بڑھتی جا رہی ہے، بیکاری بڑھتی جا رہی ہے. آپ اینکڈوٹلی سنتے ہیں اسٹوریز کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال رہے ہیں کہ فیس پے کر سکے. تو دی لیول آف پاورٹی از گوئنگ اپ، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہوگا. آپ کی جب پچھلے 2 سال سے، 1 سال پہلے جو پریویس ایئر تھا، فسکل ایئر پریویس فسکل ایئر تھا 22-23، اس میں آپ کا جو گروتھ تھا وہ نیگیٹو تھا، 0.2%. 23-24 جو ابھی جو گزرا ہے سال، اس میں بیئرلی 0.2% جی ڈی پی گروتھ ہے. آپ امیجن کریں، ہماری ایوریج پاپولیشن گروتھ از اباؤٹ 2-2.3%، ڈپینڈنگ آن واٹ نمبر. وی آر بیسکلی ایوریج انکم جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی، اینڈ اسی لیے آپ کی پر کیپیٹا جی ڈی پی پچھلے کوئی 3-4 سال سے بڑھی ہی نہیں ہے. یہ واحد اس کا یہ مطلب ہوگا. اور جنرلی آپ امیجن کریں کہ ویلتھ ایکیومولیشن زیادہ ہوتی ہے اور انکم بھی زیادہ، امیر لوگ کی زیادہ بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب جو غریب طبقہ ہے، جو 70% سے نیچے ہے، آئی ایم پریٹی شیور ان کی جو انکم ہے، ریئل انکم، وہ گھٹ رہی ہے. یہ بھی سوچیں پچھلے 1.5 سال سے آپ کی انفلیشن جو ہے وہ کوئی 25-30% تک پہنچ گئی تھی، ان فیکٹ 35-38% تک تھی. اب جو ہے جا کے وہ کم ہوئی ہے کوئی 12%. ایوریج جو 24 فسکل ایئر رہا ہے، اس میں کوئی 25% کا ایوریج رہا. آپ یہ آپ کی انکم 25% سے ون کوارٹر سے گھٹ گئی ہے، یہ سمجھیں. तो यू कैन इमेजिन, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन मोर, एक एवरेज बंदे की यहाँ बहुत ही तंग लाइफ गुजर रही है, ऊपर से उनकी इन्फ्लेशन से इनकम कम हो गई है, फिर देयर अदर थिंग्स रियली, आपकी एक बैग बिल आ जाता है, लास्ट ईयर जैसे अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में हुआ था, एक बैग लोगों को बिल आ गया, उसमें कोई मिस्टेक था, 25,000 की बिल आ गया, एक घर में जिसमें एक एक रूम है, एक फ्रिज है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, अगर उसके यहाँ एक बैग 25,000 का बिल आ जाता है, वो उसकी तो यू नो दे गेट लॉस्ट, बल्कि लोग सोचने लगते हैं कि क्या करें अपने से.
अगर इफ आई वर टू आस्क यू, देखें ये तो वी हैव सीन, वी हैव हर्ड एज वेल कि पिछले दो साल में इकोनॉमी के बड़े बुरे हालात हैं, लोग कह रहे हैं जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मसला है, नहीं जी किसी और चीज का मसला है. व्हाट आई वांट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर इज के यू नो पीपल से कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, आई एग्री, बट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम जो पिछले दो साल में आया है. ये एक्चुअली पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो डायरेक्शन रही है वो लार्जली हमेशा ऐसी ही रही है, एक बूम एंड बस्ट साइकिल में. बाहर से डॉलर आ गया तो समवॉट हम फिर भी चल गए, अदरवाइज बाय एंड लार्ज जो है ना वो यही होता है कि एक बहुत छोटी रूलिंग एलीट है जो कि सक्सेसफुली चल रही है, वो ग्रो भी कर रही है, बट बाय एंड लार्ज जो मैसेज हैं दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. अगर मैं आपसे पूछूं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम गवर्नमेंट का नया बजट आया है, डू यू सी के अब उन्होंने कोई जिसको हम कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस लेने की कोशिश की है? डू यू थिंक के चले पहले 25% आपकी इन्फ्लेशन थी, अब 12% पे आ गई है, आगे गवर्नमेंट बड़े अच्छे अच्छे नंबर्स प्रोजेक्ट कर रही है कि नहीं जी हम ग्रोथ भी 3 point something की तरफ लेंगे इस साल,
3.5%
और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लेंगे, तो वेयर डू यू सी द इकोनॉमी गोइंग पोस्ट बजट?
अनफॉर्चुनेटली ये काफी डायरेक्शनलेस बजट है, ये कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज है. आप देख लें स्ट्रक्चरल चेंज का क्या मतलब. फंडामेंटली एक तो बड़ी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है फिस्कल गैप की. फिस्कल गैप का मतलब जो गवर्नमेंट कमाती है, रेवेन्यू लेती है वर्सेस कितना खर्च करती है और इंटरेस्ट पर कितना. अब वो फिस्कल गैप जो है ना, फिस्कल डेफिसिट बल्कि, वो गवर्नमेंट कैसे कवर कर रही है ज्यादा टैक्सेशन से. मगर स्ट्रक्चरल चेंज उस वक्त होता इसमें कि यूनिफॉर्मिटी होती है, इक्विटी होती है, मतलब कोई फेयरनेस होती है आपके टैक्सेशन में कि सारे तबके जो है वो सारे इक्वली टैक्स पे करें अपने इनकम के लिहाज से. अब ये होता है कि जो टैक्स नहीं पे कर रहे पहले उनको भी टैक्स पे करना पड़ता. अब ये हम लोग ने देखा कि ये नहीं हुआ इस दफा. तो ये एक बड़े बेसिक आपने सुना होगा कि जो सैलरीड क्लास है, जो अर्बन मिडिल क्लास है, उन पर टैक्सेस और लगा दिए गए. उन पर डायरेक्टली भी लगाए हैं थ्रू हायर टैक्स स्लैब्स, ऑल्सो इनडायरेक्टली बाय एग्जेम्पशंस काफी सारी चीजों में जो मिडिल क्लास इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैक मिल्क, वो उस पर एग्जेम्पशंस जो थी जीएसटी वो हटा दिया. तो 100 रुपए
मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड ऑलमोस्ट. ये
एक लीटर दूध जो है पैकेज दूध वो पेरिस से भी ज्यादा महंगी है. तो आप इमेजिन करें पेरिस के क्या इनकम होती है और यहाँ क्या इनकम होती. तो बड़ी बेसिक चीज है एंड ये तो दूध तो हर शख्स इस्तेमाल करता है. तो आपकी बेसिकली टैक्सेशन मेजर्स हैव बीन रियली डायरेक्टेड at a small group of people and again those are the people jo hamesha se pay karte gaye tax. So salaried class on average anything between 3-6% unki tax rate badh gayi hai aur wo ek jahan aap barely survive kar rahe hain. आप इमेजिन करें मिडिल क्लास पाकिस्तान में मिडिल क्लास
जहां पर रियल इनकम भी कम हुई है, मतलब इट्स नॉट लाइक रियल इनकम सस्टेन की है या ग्रो की है, it's actually gotten less aur usme aap further tax kar rahe hain.
ye to direct humne kaha na ki 2-6% aapne shayad badhai, uske baad aapke gst jo additional har item par lag gaya wo koi 18%, uske wajah se aur aapki income kam ho gayi. So essentially I would find ke there are large number of population they are now sinking into poverty levels aur aap dekh rahe hain log afford nahi kar sakte hain. और इसके वजह से आपके ब्रॉडर इकोनॉमी पर इफेक्ट होगा, इसलिए कि उनकी स्पेंडिंग पावर कम होती जाएगी. आपकी मिडिल क्लास जैसे जैसे स्क्वीज करती, हर मुल्क में एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इंडिया देखें, चाइना देखें, वियतनाम, जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, व्हाट डू दे ट्राई एंड डू, दे ट्राई एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इनकम इन द मिडिल क्लासेस. दे वांट अ मच ग्रेटर सेक्टर ऑफ मिडिल क्लास. यहाँ बल्कि मिडिल क्लास को स्क्वीज करके आप एकदम पॉवर्टी में ले आ रहे. So you can imagine what we are doing, and that will have a direct impact on the spending power of the population. Spending power nahi hogi to kahan se aapki economy goes. Dusri cheez thi ki aap structural change ki baat ho, ye to taxation measures essentially unfair, essentially not willing to tax aapke retail, aapki jo agriculture, aapki jo property sector hai usme bhi jo tax lagaya, by and large aapne exemption de diya certain segments ko, aap jo jante hain bureaucrats ko, civil servants ko, aur jo kuch adare hain unko aapne tax exemptions de di. So basically, again, the people who are powerful, the people who have street power, the people who have the ability to manipulate the government through political power, un par aap tax nahi lagate hain. Jo bichare jinke paas is kisim ki effectively jo main kehta thug power nahi hai, wo aap un par tax lagate rehte hain. Ye almost ek medieval kisim ka aap soche, jaise pehle zamane mein badshahon ke zamane mein hota hai ki chalo aur mujhe zameen, mujhe aur kharch karna hai, mujhe ek aur castle banana hai, to chalo main ada ke gareebon par tax kar do, jo jiske paas bhi paisa hai us aur jise aaram se le sakta hai.
But then that's my question, right? It's the 21st century. Do you think this is sustainable for an economy like Pakistan, for a population like Pakistan, in the age of social media, in the age of information? Do you think ke log bas grumpy rahenge, theek hai wo social media pe char memes bana lenge, but wo denge aake ye tax, wo chalayenge is tarike se? Because I see a lot of young people aspirationally living their lives, hoping and dreaming ke yaar hum koi startup banayenge, koi business banayenge, hum grow karenge. I don't see that growth coming over the next year.
Not coming over the next year, not coming over the next 2 years, not coming over the next 5 years as things are going. So aapne shuru kara tha ki aap kaise dekhte hain economy ko. Unfortunately, very bleak. In fact, the reason I see it's very bleak, not because ek do saal ke jo structural change hona chahiye tha, jo IMF ki facility hoti. IMF ki kis liye aap jate hain? IMF isliye jate hain ki aap structurally change kare apne economy ko, bhale aap ek saal do saal difficulty mein ho, badi aapko ghatan ho, aapki economy bhi contract kar jaye, but you then have a position ki aap uske baad grow karte jaye aur sustainably growth karte jaye. Hum log jo IMF istemal karte hain as working capital, aap samajh dekhe bas paise le le, wahi jo structure hai society ki aur economy ke usko rakhe, koi major change nahi kare. Jo log extract kare wo continue kare extract karna, jo elite capture hai, the state capture hai, wo continue kare, aur jo gareeb hai wo gareeb se gareeb hote jaye. And that is fundamentally what we use the IMF facilities for, not to bring about the structural change. Zarur finance minister sahab bhi kehte hain, probably with good intentions and sincerely kehte hain ki hum log bade reforms laenge, magar when you look at the numbers, when you look at the overall economic direction, there is no reform, and that is fundamentally the problem. I think jo aam awam hai, aur aam awam ko kabhi nahi underestimate karna chahiye kahin bhi nahi. Aapne dekha Vietnam, they managed to grow to be one of the fastest growing economy after a long period of struggle. I always give the Vietnamese example. They struggled for their sovereignty. They struggled with about 5 million lives to fight the Americans. They actually then re-educated the population, spent a lot of time in terms of enabling the population, improving the structures. And then from 1999 onwards, they did not look back. They started growing at sort of 9-10% almost continuously. Now, because they set the economy, but unko ye tha, they were willing to pay the price, and the people were willing to pay the price. Same probably in China. In the lesser example, though, is India. In 1991-92, they went through their crisis, and then they went through a difficult period, and then after that, they never looked back. What we tend to do, hum log ka jo hai, we don't want to see that real structural change or real crisis, and for that, we just keep borrowing. Keep the status quo going, and this status quo suits a certain section of the society, which is not the top 1% of Pakistan, top 1% of America, it's the top 0.1%. And now actually what we are finding, Muzammil, is we are finding even the top 5% are beginning to complain. Aap imagine kar sakte hain, aap to jante hi hain ki jo 3-4 lakh kama raha hai Pakistan mein, wo top 5% mein aata hai. महीने का 3-4 लाख जो कमा रहा है, इस कमिंग इन उनके गुजारा होना डिफिकल्ट हो गया. इज बिकॉज आप अगर इलेक्ट्रिसिटी की बिल कोई 50-60 हज़ार पे करेगा और बच्चों के स्कूल अगर कोई अनदर 50-60 थाउज़ेंड पे करेगा, रेंटल 1 लाख पे करेगा, तो आपके पास बचेगी क्या टैक्स पे करने के बाद?
ट्विटर पे तो एक्चुअली आई वाज सरप्राइज्ड टू सी लोगों ने कहा कि हम दो लोग रह रहे हैं सुबह से शाम तक, अब जॉब पे होते हैं, 1,20,000 1,30,000 रुपया बिजली का बिल आया हुआ है. लाइक बिजली का बिल इज mind-numbingly insane, and I want to talk about that particularly because Gauhar Ijaz sahab ka ek tweet aaya hua tha, usne bada Twitter ke upar ek khappi maja di because people were like ye kaisi baat kar di inhone. For those who don't know, he was formerly the caretaker minister aur I think chairman for Aptima as well, wo jo Aptima nahi,
what's the chairman rahe aur
caretaker. So he represents the textile lobby, right, essentially. And now he is coming out and saying ke bhai bijli ke bill are unsustainable and we need to re-evaluate, re-profile the IPP jo aapki unke sath deals hui hai. Tell me a little bit about the energy problem, the electricity problem particularly, kyunki 66 rupees ka is waqt unit Pakistan mein average logon ke gharon mein aa raha hai. Kal maine suna ke 3-4 rupaye mazid badha diya hai, sunne mein aa raha hai ke saal ke end tak 100 rupaye cross kar jayega. How is that sustainable? Like, you know, you're on the race to the bottom where aap constantly price badha rahe hain, usse consumption bhi kam ho rahi hai, usse recovery bhi khatam ho rahi hai, jiski wajah se capacity payments bhi badh rahi hain, aur wo automatically it's a it feeds itself, it gets more and more expensive.
Absolutely. And it's then, a vicious cycle down,
right? And so log sar khoja rahe hain, 4-3 saal mujhe ho gaye, maine Miftah Ismail sahab ka mujhe wo bada mashhoor yaad hai, unhone 12 rupaye ki bijli promise ki thi jab hamari unse baat hui, unhone kaha ki ji ye to actually 12 rupaye se zyada ka banta hi nahi hai, unfortunately wo bhi aaye darmiyan mein multiple times and it's just grown since then. So tell me about the electricity problem, and particularly touching upon the idea ki can the IPP agreements be re-evaluated, and can we potentially default on those agreements?
Okay, will you give me just 5 minutes? And zara sa is technical hai, magar I'll try and keep it as simple as possible ke audience samajh sake. To dekhiye, bade simple ye hai ki hamare paas installed capacity thi koi 23,000 megawatts ki in 2013 mein, aur bahut chal raha tha, brown outs ho rahe the, 6-6 ghanta 8-8 ghanta kai jagah 10-10 ghanta brown outs the. तो ये था कि, और इंडस्ट्री बड़ी कंप्लेन कर रही थी क्या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं, और उस वक्त जनरली एप्टमा वाले कह रहे थे और दूसरे भी कि देयर इज नो पावर एज एक्सपेंसिव एज नो पावर. इसका मतलब किसी कॉस्ट पर भी आप इलेक्ट्रिसिटी बना दें वो ठीक है, हम लोग मान लेंगे, मगर इलेक्ट्रिसिटी दे चाहे कितनी महंगो. नाउ उसके PMLN गवर्नमेंट का केम उसी स्लोगन को लेके उन्होंने बेतहाशा IPP कॉन्ट्रैक्ट. And these contracts were truly unique in the feature that they had extraordinary returns promised to the companies setting them up. And by and large, under CPEC framework, zyada tar ye companies aaye. So between effectively, aap samjhe 2015 to present, ab jo hamari capacity ho gayi hai, wo 46,000 megawatts ho gayi. Between 2015 and 18 koi hum log ne koi 7000 megawatts lagaya, aur phir uske baad gradually badhte gaye. Pichle 4 saal mein hum log ne extra aur add kara hai 10000 megawatt.
Right,
acha uske wajah se aapki jo hai do cheeze, ek to profit aap pe karte hain 8.17.5% uske jo company ki jo hai equity shares unki jo ownership hai us par aap profit pe karte hain, मगर दूसरी चीज है जो 80% जो डेट है जो आपकी बोरोइंग है उस पर आप एक रीपेमेंट शेड्यूल है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसकी 80% जो है वो बोरोइंग से, वो बोरोइंग आप 10 साल में पे बैक कर रहे हैं और वो 10 साल में सारी की सारी ये पेमेंट होती जाएगी. तो आप समझे कि अगर आपने बोरो करा है पिछले कोई 6 साल में, आपने ओवर अ पीरियड आपने कोई 25 बिलियन बोरो करा, आपको हर साल ये 25 बिलियन अब पे बैक करना पड़ रहा, ठीक है, शायद थोड़ा सा ज्यादा हो नंबर, और अभी भी अगले 6 महीने में कोई 1000 मेगावाट और लग जाए वो भी आ जाएगा, उसका भी रीपेमेंट. तो ये जब रीपेमेंट कर रहे हैं और इसके साथ आप प्रॉफिट भी दे रहे हैं कोई 17.5% पर, जो कोई और 5 बिलियन है, तो आपको कोई 2.8-3 बिलियन आपको हर साल पे करना पड़ रहा है। ये कहाँ से पे करिएगा? ये उस वैसे ही पे करिएगा बाय थ्रू दी इस, और ये जो डेट वाला पार्ट है इसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। तो ये जो लिटरली 2016-17 में इसकी कैपेसिटी पेमेंट्स कोई 150 बिलियन थी, 168 बिलियन टू बी प्रिसाइज, ये चली गई है अब जो है कोई 2.1 ट्रिलियन। आप 2100 इस साल ये बात, तो आपकी कोई इमेजिन करें 10 टाइम्स बढ़ गई है। और ये 10 टाइम दो रीजन पड़ी, एक तो आपकी रुपी, इसलिए कि ये सारा डॉलर में गारंटी था, ये आपको सारे डॉलर में पेमेंट पे करना था, तो डॉलर का जब वैल्यू गिरा है फ्रॉम 2018 टू नाउ के 3 टाइम्स 2.8 टाइम्स, इसलिए कि उस वक्त 100 था अब 2.8, ये डॉलर में, तो आपके डॉलर वैल्यू की वजह से गिरी है। और दूसरी चीज है जैसे जैसे कैपेसिटी आई है वो कैपेसिटी पेमेंट करनी है, तो ये बड़ा
क्योंकि इसके ऊपर लोग आके कहते हैं कि यार भाई आपका रिस्क बहुत ज्यादा था, कोई और ऑप्शन नहीं थी गवर्नमेंट के पास, उन्होंने ऐसा ही करना था। कैन वी मतलब आई एम जो मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, मैं अगर एक ले मैन हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं पीछे डॉक्यूमेंट्स में नहीं गया, मैं नंबर्स में नहीं गया, इंडिया और बांग्लादेश कैसे दे पा रहे हैं सस्ती बिजली और हम क्यों नहीं दे पा रहे? मतलब सिमिलर डायनामिक है, सिमिलर GDP पर कैपिटा है, चलें ठीक है इंडिया को अब आजकल वो बहुत ज्यादा ओवर सेल कर रहे हैं कि बड़ा कमाल हो गया है, लेकिन बाय एंड लार्ज उनकी GDP पर कैपिटा तो आपके जैसा ही है ना, और जो भी उन्होंने लगाया है पिछले कुछ अरसे में तो वो भी उधर से ही आए हैं जिधर से आप आए हैं। बांग्लादेश तो बाय एंड लार्ज बिल्कुल ही आपके जैसा है, उनकी तो कल वो खबर आई कि जी $10 बिलियन उन्होंने ओवर अनाउंस किए हुए थे एक्सपोर्ट्स के, तो उनके यहाँ भी आपके वाले हाल चल रहे हैं। हाउ आर दे एबल टू मैनेज द पावर सेक्टर जहाँ पर हमारे पास जो है वो गाना वाला हिसाब हुआ है कि बिल्कुल ही अनसस्टेनेबल हो चुका हुआ है?
दो तीन चीजें फैक्टर्स, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर, हमारी जो प्रॉफिट गारंटी थे वो higher than India, definitely it's also higher than Bangladesh. Moreover, repayment profile jo thi, wo bhi shorter thi, jaldi zyada pay kar rahe hain nisbat. Dusri cheez hai ki Bangladesh aur India mein depreciation itni nahi hui. Pakistan mein just in the last 2 years, it has fallen by about 60%. So, aap ye samajh lena ke ye depreciation ka isme bada factor hai in terms of rupee value. तीसरी चीज ये है कि वो मुल्क वहाँ ग्रोथ रेट आपकी GDP काफी ज्यादा रही है पाकिस्तान से। बांग्लादेश इंडिया हैव बोथ बीन ग्रोइंग इन एक्सेस ऑफ 5%। आपकी जब GDP ग्रोथ होती है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ग्रोथ होती है, तो आपकी पर यूनिट जो कैपेसिटी आता है पर यूनिट उसका कॉस्ट कम होता जाता है। पाकिस्तान में यह हुआ है पिछले 6 साल से वर्चुअली जीरो ग्रोथ रही है, डन बहुत कम ग्रोथ रही है, कोई टू एवरेज कोई 2.5-3% ग्रोथ रही है। तो जब ये होता है आपकी ग्रोथ नहीं होती, ये सब जो प्लांट्स लगे थे इसमें अजम्पशन था कि जस्ट इमेजिन डबल कैपेसिटी फ्रॉम, जैसे मैंने कहा 23,000 मेगावाट्स टू 46,000 मेगावाट्स, तो इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रोथ कोई 7-8% एवरी ईयर, और जब आपकी ग्रोथ नहीं होती तो वो तो कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं होती है, बगैर इस्तेमाल हुई आपको पे करना पड़ रहा है। और इसीलिए देख रहे हैं काफी सारी ऐसी पावर प्रोडक्शन है जो 100% नहीं इस्तेमाल हो रही, मगर हम लोग 100% पेमेंट कर रहे हैं। कुछ है कोई 30% साहिवाल जो कभी 30-35% ज्यादा उसकी इस्तेमाल नहीं हुई, मगर हम 100% उसका जो कॉस्ट है पे कर रहे हैं। तो ये इस किस्म की basic misalignment, bad assumptions, bad planning के वजह से अगर आप ऐसे बेतहाशा plants लगाएं जिसमें capacity guaranteed payment है, वो जो इनका term था take or pay, और आपकी growth नहीं हो, तो naturally आपको per unit cost बढ़ती जाती है।
मुझे एक बात ये बताएं, आपने कहा कि जो हमारा debt है वो हमारी capacity payment है essentially, right? जो और जो डेट है उसकी जो डील है वो ये है कि जी 10 ईयर्स तक आपने उसको करना है, तो जो कैपेसिटी पेमेंट है वो सिर्फ 10 ईयर्स तक चलती है
बाय एंड लार्ज, कुछ ज्यादा हो सकती है, कुछ और पेमेंट्स भी है, कैपेसिटी में इंश्योरेंस ये सब बहुत चलती रहेगी,
2014 کے جو نئے معاہدے ہیں جو 23,000 سے 46,000 پہ ہم گئے ہیں, اس سے پیچھے والے جو 23,000 ہیں اس پہ کیپیسٹی پیمنٹ اس وقت نہیں ہو رہی, اس پہ ہم زیادہ استعمال کریں ہم کم استعمال کریں, اس پہ
نومینل کچھ رینیو ہوئی ہیں, وہ کچھ کچھ ایڈیشنز ہوئی ہیں جو پرانے پروجیکٹس ہیں, مگر بہت ہی کم, لٹرلی اف یو امیجن اٹس لیس دین 100 بلین آن دوز پروجیکٹس.
رائٹ, وین وی سے ٹیک اور پے, ٹیک اور پے, رائٹ, ایک تو انڈرسٹینڈنگ یہ آتی ہے کہ ایررسپیکٹیو آف اینی اکاؤنٹنگ اگر آپ نہیں استعمال کر رہے تب بھی آپ نے پیسے دینے. اس ٹیک اور پے لارجلی ٹرم یوزڈ فار دا ڈیٹ کمپوننٹ دیٹ ہیز ٹو بی ریٹرنڈ. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 10 سال میں لیٹس اسیوم آپ نے یہ ڈیٹ سارا نکال دیا, اس کے بعد بھی یہ ٹیک اور پے ہی کہلائے گا یا اس کے بعد یہ بیسیکلی
سٹینڈرڈ ہے؟ دوسرا کمپوننٹ جو ہے وہ پروفٹ, جو ایکویٹی انویسٹمنٹ ہے, جو اپنا شیئر جو ہے کمپنی کا, اس پر آپ 17.5% 18% پے کرتے جائیں گے ٹل 25 ایئرز. یہ زیادہ تر کانٹریکٹس 25 ایئر کانٹریکٹس ہیں, 25 ایئرز کے بعد اگر رینیو نہیں کرتے تو یہ آپ کو, آپ امیجن کر رہے ہیں کوئی 5 بلین پر کوئی 20%, جسٹ فار ایز آف کیلکولیشن, آپ 20% پے کرتے جائیں گے فار دا نیکسٹ 25 ایئرس, تو وہ کوئی امیجن 1 بلین آپ کا ہر سال جاتا رہے گا.
میجورٹی آف دا پاور پلانٹس ہیڈ میڈ دیئر ریٹرنز ان دا فرسٹ 2 to 3 ایئرز پی کے آر ویلیو پہ, کیونکہ انہوں نے کیا یہ تھا ادھر سے ڈیویلیویشن ہو رہی تھی, انویسٹ انہوں نے پی کے آر ہی کیا تھا, پی کے آر انویسٹ کیا, بینک سے ڈالر کنورٹ کروایا, جا کے انویسٹمنٹ کے ڈالر پیک ڈال دیے, کیونکہ بہت ساری اس میں پاکستانی کمپنیاں ہیں, جو باہر کے انویسٹرز ہیں وہ تو ہیں بٹ بہت سارا پاکستانی بھی رینٹ سیکر پاور پلانٹس میں گھسا ہوا ہے اور وہ 2-2.5 سال میں پیسہ اپنا نکال چکا ہے, اب وہ انفینٹلی اپنی پوری زندگی عیاشی کر رہا ہے فری منی کے ساتھ.
ہم لوگ نے رینٹ سیکنگ بس پاکستانیوں کو نہیں دیا, افسوس کی بات ہے, وہ پاکستانی تو اپنے لوگ تھے تو چلے یہاں ہی خرچ کرتے, ہم لوگ نے رینٹ سیکنگ انٹرنیشنلائز کر دیا, یہ افسوس کی بات ہے. موسٹ آف دیز پروجیکٹس آر انڈر دی سی پیک فریم ورک, اس میں جو ڈیٹ پاتھ ہے یہ چائنیز بینکس کو ہے, تو آپ کا ڈفرینٹ جو ایک اور کوشچن تھا, چائنیز کچھ اور بھی کمرشل بینکس ہیں جو اس پر کیا کر سکتے ہیں, دیکھیں یہ انسسٹینیبل ہے, آپ کا بیسک کوشچن ہے, جتنی پیمنٹس ہم لوگ کو کرنی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ 4-5 سال کے بعد یہ ڈکلائن, مگر بہت ہلکے سے ڈکلائن کرے گا, 5 سال تک یہ چل رہا ہے اور ابھی شاید اور بھی اس میں ایڈ ہو, ایٹ لیسٹ نیکسٹ 6 منتھس میں کوئی 1,000 میگاواٹ اور ایڈ ہونا ہے, پھر اس کے بعد بھی پلانز ہیں اور ایڈ کرنے کے, تو آپ کی یہ ابھی پیک نہیں کرا, یہ ابھی اور اس میں ایڈ ہونا ہے, تو امیجن کریں کوئی جا کے اگر کیپیسٹی پیمنٹس کوئی 2.5 بلین پر پیک کرتا ہے تو ہر سال, اوپر سے آپ کو کوئی
2.5 ٹریلین,
ہاں 2.5 ٹریلین کیپیسٹی پیمنٹس ان ٹرمز آف روپیز, تو آپ کی جو ہے پیمنٹس وہ چلتی جائیں گی ایٹ لیسٹ اندر 4-4.5 ایئرز, اس کے بعد اب شاید کچھ ڈکلائن دیکھیں. ناؤ دا پوائنٹ اس کے لوگ انتظار کر لیتے ہیں, مگر ہم لوگ کے پاس نہیں ہے کیپیبلٹی اگلے 3-4 سال انتظار کرنے کی,
بیسیکلی آپ کرش کر دیں گے نا, وہ جو ایک پوری جنریشن جو ویٹ کر رہی ہے کہ گروتھ آئے گی, میں محنت کروں گا, میں اس کے محنت کے بس کچھ ریٹرن کرواؤں گا, پھر وہ سارے بیٹھ جائیں, مطلب دیئر گونا, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ, رائٹ, لائک
ادر پوائنٹ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہاں پر شاید پیک کر گئی ہے, یہ اسمپشن ہے کہ آپ کی روپی اب ڈیویلیو نہیں کر رہی, یہ کتنی ریئلسٹک اسمپشن ہے, کین یو امیجن اگلے 3 سال میں کوئی روپی ڈپریسیشن نہیں ہوگی, we have already said ہر سال اگر آپ کی انفلیشن چلے بڑے کنزرویٹیولی بھی کر لیں 12% ہے, تو ایٹ لیسٹ کوئی 10% ڈپریسیشن ہوگی, تو اگلے 3 سال میں کوئی 30-40% آپ کی ڈپریسیشن آ جائے گی, تو اگر وہ ہوگی تو آپ کی روپی گرے گی, تو وہ آٹومیٹکلی کیپیسٹی پیمنٹس روپی میں بڑھتی جائے گی, تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹس پیک کر دی ایٹ لیسٹ ان روپی ٹرمس, اینڈ سو آپ کی یہ جو روپی ریٹ ہے, اسی لیے کچھ لوگ, میں نہیں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ 100 روپیہ بائی اینڈ آف دی ایئر چلی جائے گی, پروبلی اٹ ول بی اراؤنڈ 60-65, دیٹس واٹ آئی تھنک, تھوڑی سی اور شاید بڑھ جائے اگر ڈپریسیشن ہو, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول گو اپ ٹو 100, بٹ دی فیکٹ آف دی میٹر 60-65 از بیک بریکنگ اینی وے, واٹ مور ڈو یو نیڈ, دیکھیں آپ کی ایوریج کنزیومر کے لیے कंज्यूमर के लिए, जो हाउस होल्ड कंज्यूमर के लिए, उसकी पड़ जाती है ऑन एवरेज अराउंड 16 सेंट्स पर यूनिट।
राइट,
अगर आप इंडिया, बांग्लादेश और ममालिक देखें, इट रेंजेस फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम 4%, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, एनीथिंग फ्रॉम 4 सेंट्स टू समथिंग लाइक 7 सेंट्स। इंडिया में कुछ स्टेट्स में इवन इट गोज डाउन टू 2 सेंट्स, 3 सेंट्स। So we are comparing the household capabilities. You are paying about 16, 17 cents, whereas the households in India are paying substantial. And this is, all right, this is for the households which have consuming more than 300 units. But that is much of your middle class. Jo less than 300 units kar rahe, that is not your middle class. That's the protected and lifeline. Then they are already actually living on basically subsistence existence. So aapki spending power bahut diminish ho rahi, and this is what we have to understand. It directly takes away from the pocket to able to be spent on anything else. To aapne ek sector ko to bada acha kar diya, magar aap basically sare dusre sectors ko khatam kar rahe by taking away the money. You're sucking out the money out of the system.
Nahi, but that's my question, right? So now what's the जो सोल्यूशन मुझे नजर आ रहा है, एक तो ये कि आप बैठ जाएं, आप नंबर्स को प्ले आउट होने दें, आप 5 साल कैपेसिटी पेमेंट्स को पीक करने दें और फिर टेपर ऑफ करने दें, एंड देन इवेंचुअली, और उसमें उसके दरमियान में आप कोई नया प्लांट और कोई नया मुआहिदा ना करें, एंड यू जस्ट वेट इट आउट एंड होप कि मैजिकली सोसाइटी ग्रो कर जाएगी। मसला मेरा ये है कि ग्रोथ ऑन द बैक ऑफ अनकम्पेटिटिव एनर्जी प्राइसेस कैन नॉट हैपन, लाइक इट्स नेवर हैपन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट गोना हैपन हियर एज वेल। आप कोई एयरपोर्ट्स बेच दें, आप कोई यू नो सोना निकालने के ख्वाब देख लें, वो वाली ग्रोथ नहीं आएगी। सो यू जस्ट, यू बेसिकली सेइंग मैं 5-6 साल या तो वेट कर लूं और मैं हालात बुरे ही रहने दूं, और आपके पास ऑप्शन क्या है? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट के, एंड अगेन इसमें मैं नाउ आई विल कम बैक टू गौहर साहब, कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि जी आप जाएं और जाके आप मुआहिदों को फिर से री एवेल्यूएट करें। जैसा कि लास्ट गवर्नमेंट के टाइम पे हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जी हमने जो कुछ IPPs हैं उनके साथ हमने PKR के ऊपर मुआहिदा कर लिया, हमने कहा कि जी जो भी अमाउंट है वो अब आपको PKR पे मिलेगी, विच मींस कि वो डिवैल्यूएशन प्रोटेक्टेड होगी। सो दैट्स माय क्वेश्चन, आर वी कैन वी पोटेंशियली गो टू दीज IPPs एंड रीनेगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि जिसमें अगेन माय अंडरस्टैंडिंग इज कि वो जो रीनेगोशिएशन हो रही है वो इक्विटी के ऊपर हो रही है। व्हाट डू यू डू विद द डेट कंपोनेंट, बिकॉज व्हेन यू एसेंशियली, जो उसका काउंटर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप डेट को रीनेगोशिएट कर रहे हैं दैट मींस यू आर एसेंशियली सेइंग कि वी हैव डिफॉल्टेड। When you default, तो फिर automatically आपका उससे एक you know, there's a series of events that happen after that.
ये जो आपने report पढ़ी थी 2020 की, जो मेरे दोस्त मोहम्मद अली ने चेयर करा था, and it was a very good report. उसमें जो component उन्हें करा था was your right equity rupee करा था। बात ये कि आपकी जो international agreements हैं उसमें भी जो है international जो investors हैं उनकी नहीं change करी थी। इसलिए कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बोथ द इक्विटी रिटर्न्स एंड द डेट रीपेमेंट्स आर सॉवरेन गारंटीड, उसमें आप कोई भी उसके टर्म्स चेंज करेगा, एक पेनी से भी अगर, एक पैसे से भी अगर चेंज करेगा, तो दैट विल काउंट एज नेचुरल डिफॉल्ट। चेंजिंग द टर्म्स ईदर ऑफ द इक्विटी और द और द डेट विल काउंट एज डिफॉल्ट। तो ये बात नहीं कि आप जाके इक्विटी चेंज कर लें। तो बात यह है बड़ी सिंपल, दिस इन माय व्यू एंड माय पर्सनल व्यू इज फंडामेंटली ड्रेनिंग द वाइटैलिटी आउट ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी बेसिक जो कतर है वो निकाल दे रही, एंड एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, एक हिंदी टर्म है, कचूबर निकाल दे रही। बेसिकली इट इज कंप्लीटली स्क्वीजिंग अस आउट एंड रियली इट्स अनसस्टेनेबल, एंड जस्ट बिकॉज वी आर सो फेयरफुल ऑफ द वर्ड डिफॉल्ट, we don't want to talk about it. We will need to go and renegotiate these contracts. And this is what, by and large, IMF has said. Dusra tha ke aap line losses kam karte hain aur recover, usse koi khas fark nahi pad raha hai. Agar aap dekhe in terms of aapki cost, abhi jo hai koi 33 unit average cost pad rahi hai per unit. Usme koi jo 20 rupees hai, 21 is basically your capacity payments. The balance is your energy cost or per kuch distribution cost is. Usme agar aap line losses ko near half bhi kar de aaj, यू विल स्टिल बी उसके कोई एक रुपया का फर्क पड़ेगा, डेढ़ रुपया का मैक्सिमम फर्क पड़ेगा, डेढ़ रुपया से आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं हो जाएगी। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है जो हमेशा लोग कहते हैं कि लाइन लॉसेस कम कर दें तो वो ठीक, जरूर करना चाहिए, लाइन लॉसेस एंड रिकवरी बेहतर करना चाहिए, मगर उससे आपकी गेम चेंजर वाली फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम इज, ये लिटरली दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन एंड वी शुड स्टॉप दिस डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज यस वी नीड टू फोकस ऑन इट, वी नीड टू मेक श्योर के कम हो, मगर जो उससे आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो नहीं कम होगी, सिंस द प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम कैपेसिटी पेमेंट्स। कैपेसिटी पेमेंट्स को कम करने के लिए दो ही तरीका, आइदर आप रीनेगोशिएट करें द टर्म्स जिसे कहते हैं डिफॉल्ट, या आप एक बैग जो है आप 6-7% जीडीपी ग्रोथ करने लगे और उससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजिशन टू ग्रो एट 6-7% फॉर द नेक्स्ट 4-5 years at least, until it undergoes restructuring of its basic economy. आपकी इकोनॉमी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है कि 6-7% पर ग्रो करे। ये अनरियलिस्टिक बात है।
If I were to play out default, because again there is a lot of fear mongering. In fact, मेरी एक वीडियो के ऊपर कमेंट पिछले दिनों आया हुआ था, उन्होंने कहा कि जी आप अगर थोड़ा सा प्ले बाय प्ले बता सकें कि for the sake of the audience के यार what is default, what is going to happen when we default, and then the audience can then decide कि यार is that a pathway that they might want to go to. और दूसरा इसी के साथ मेरा सवाल ये है कि if we don't default, is there a possibility that we keep on avoiding default until it becomes an inevitability? Yeah, are we saying that okay, we can default to accelerate positive growth and potentially, because it's a risk, na? Default is a risk. In the counter, people say that Lebanon has hard default, it can't stand up today. You know, default is something that is very damaging, hota hai, potentially violent. So that's all you fear mongering, how many poor people are going to be default. Ho gaya. What really happens? Can we play it out?
Can I just say, Lebanon is a very good example they talk about. It is not Lebanon's warlordism, jo hai, basically warlords mein basically the taksim ho gayi. It didn't happen because of default. Default was a consequence of something else. They didn't hold elections on time. Because they didn't have elections on time, you didn't have a cohesive government, your central government, your renegotiate kar sakti that. So the problem isn't one of economics, the problem as ever is always of politics. So I think ek ye galat example hai. Default kafi mulkon mein hai. Let me give you count some examples. Ghana mein default hua hai. It restructured, it's starting to grow again. Abhi latest example hai, kal hi hua hai, finalized in terms of restructuring, is Sri Lanka. They defaulted, now they're getting back on the growth path. They can see a better future. They basically, aapne ek aur question, do you think this can go on, jaise kehte hain, ad nauseam forever and forever? No, I don't think so. I think at some point we'll hit the wall anyway. What we are doing, jo basically we are contracting the economy in a different way, which would have happened if we had defaulted anyway. But probably we dekhna chahiye ke payoffs kya, trade-off kya between defaulting and not defaulting. Right. By not right. defaulting, what we are doing is we are continuing to service this debt, which is bahut hi hard hai, usme sari ye jo capacity payment bhi kar rahe hain hum, jo borrowers hain internationally unko bhi pay kar rahe hain, aur because of that we are squeezing the economy. Hum imports ko kam karna pad raha hai, apne economic growth ko kam karna pad raha hai, because hamare paas capacity nahi hai. Agar jaise hi hum log grow karne lagte hain, hum log ko balance of payments crisis hone lagti hai. Hamari jo imports hain, 2 saal pehle 2022 mein $80 billion hoti thi, ab wo ghat ke $55 billion ho gayi. We think that is great, that is not great. Imports coming down basically means you're not growing, because aapki imports jo hai wo exports ke liye bhi istemal hoti. Moreover, it just shows the standard of living is falling. Aap kya kharch nahi kar sakte hain, so basically it's not a great news ki hamari imports jo thi, hamari exports koi khas nahi badh rahi. It has gone up from about 26, 27 billion to this year about $30 billion. So frankly speaking, we are not growing. And imagine our population continues to go at 2%. So this, at the same time, the worst thing about this, hamari jo debt repayment hai, wo nahi kam ho rahi. Wo jo pehle 15-20 billion hoti thi 3-4 saal pehle, अब वो 20 बिलियन आए, अब इस साल जो है एक्सपेक्टेड है जो लेटेस्ट स्टेट बैंक नंबर्स, एंड दिस आई डोंट इंक्लूड कैपेसिटी पेमेंट्स, आई डोंट इंक्लूड डिविडेंड रीपेमेंट्स, जस्ट द डेट रीपेमेंट व्हिच इज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट बैंक, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट 26 बिलियन फ्रॉम मे. मे का आप अगर देखें लिक्विडिटी प्रोफाइल इन इन फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, इट सेज 26 बिलियन, और ये कम नहीं हुई, इट हैज गॉन अप. सो वी आर नाउ गेटिंग मोर एंड मोर squeezed by debt repayments. So अगर ये होता ना कि हम लोग ये सारा तंगी करके बंद करके खर्च नहीं करके, अगर ये होता कि debt repayment करके हमने ये बला टाल दी और अब बेहतर होती, we are not getting any better.
तंगी करके हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डॉलर बचता नहीं है जिससे हम पैसे वापस कर रहे हैं. मेजोरिटी ऑफ दिस 26 बिलियन इज गोना बी रोल्ड ओवर, व्हिच is
basically not only rolled over, this is the point, it is getting rolled over in many cases with higher interest rate payments, the terms are changing. So wo demand kar rahe hain ki aap jahan 2% pay kar sakte the pehle wo aap 4% pay kiye, isliye ki aapne ab isko roll over. Yeah, jo lender hai wo hamesha aapse jitna kun choose sakta hai wo choosta hai, no matter kitna kitne dost ho. So let's be very clear. So our interest repayments, which a few years back used to be sort of 2-3 billion, now is just on these rollovers is going up to 5-6 billion, and it so will it's keep going,
it's going to snowball into just something that I
have said that there's a snowballing effect taking place. We are very lucky ki abhi hum log borrow nahi kar sakte, nahi to aur bhi borrow karke aur bhi snowball ko bada dete. But we are not reducing our debt levels. So this is we are remaining in a crisis. We are denying our youth the growth prospects, which is essential to create jobs for them, opportunities for them to get skilled up. Agar aap jobs nahi karenge to skill kaise rahe? And this youth, the youth bulge, which was supposed to be our great hope, are not getting the jobs to get skilled to be able to earn for later. So that is the disaster. It's a societal disaster.
Okay, so again, play it out for me. What happens? Let's assume that the government decides that we can't do this. 26 billion we can't do. And we decided that we will go and sit with them and they will say, let's come up with new terms and reprofile this debt. What happens to Pakistan in that case? Chahe wo, power us pe ho, circular debt ka reprofiling, ya aapka overall jo wider foreign currency ka debt.
I tell you, initially there will be a crisis inevitably when you start that noise of start sounding out ke moratorium karne wale, and there will be panic and there will be many people, they'll try and take out the money. The rupee will see a fall. It has already seen a quite considerable fall. Koi 2 saal ek saal pehle koi 200 tha, 280 hai lagbhag. You might see it go down to 330, that will create inflation. So there will be all of those things. But we have seen, I think, a lot of the problems of default already built into the economy now. We have been effectively living through a partial default scenario anyway. And we have slowed down the economy.
डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट आना था कि यार एक बूमिंग इकॉनमी है उस पर डिफॉल्ट किया तो एकदम से आपका इंपोर्ट्स रुक गई वो सारा, तो आपने ऑलरेडी स्लो डाउन करके ऑलरेडी इंपोर्ट्स रोक के ऑलरेडी, क्योंकि अभी चोक हुई भी है सो आर्टिफिशियली बहुत सारे एरियाज ऑफ द इकॉनमी हैव बीन चोक्ड जस्ट टू सस्टेन.
एग्जैक्टली. सो आई पर्सनली थिंक कि इतनी कोई ड्रामेटिक इम्पैक्ट नहीं होगा. आपकी रेमिटेंसेस ये तो नहीं है कि अभी कोई 28-30 बिलियन है तो वो जीरो हो जाएगी, वो तो नहीं होगी. दैट विल कंटिन्यू प्रोबब्ली 26-27 बिलियन. आपकी जो एक्सपोर्ट्स है, देयर इज नो रीजन व्हाई दैट दो शुड डिसअपीयर, दैट शुड प्रोबब्ली बी अनदर. सो यू इफ यू कंटिन्यू गेटिंग दैट, यू विल स्टिल बी एबल टू बाय योर ऑयल एंड यू विल बी एबल टू सर्विस अ लॉट ऑफ योर अदर इंपोर्ट्स. सो इन फैक्ट आप इंटरेस्ट रीपेमेंट्स बंद करके और जो कोई 6-7 billion जो कर रहे हैं तो आपकी इम्पोर्ट कैपेसिटी बढ़ जाएगी. मोर ओवर आप डेट रीपेमेंट जो प्रिंसिपल रीपेमेंट्स नहीं करें, शायद वो भी उसकी भी कैपेसिटी जरा सा ऐड करिए. सो इफ एनीथिंग यू माइट सी अ स्लाइट बूस्ट, एंड दिस इज अ फैक्टर नोबडी कंसिडर्स, दैट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान माइट एक्चुअली सी इटसेल्फ वंस इट गेट्स इनटू अ मोरेटोरियम, यू स्टार्ट एक्चुअली सीइंग सम बेनिफिट्स, बिकॉज वी आर रियली अज्यूमिंग द वर्स्ट विल हैपन. रेमिटेंसेस भी बंद हो जाएंगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स भी बंद. क्यों बंद होंगी यार? क्यों बंद होगी? आई मीन देयर इज नो रीजन व्हाई.
इस पे जो बैंकर क्राउड है ना, वो आके कहता है कि जी आपकी तो जो वो है बोरोइंग की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका जो बॉन्ड है वो ट्रैश वैल्यू हो जाएगी उसकी, आपका जो है वो क्रेडिट रेटिंग तबाह हो जाएगी. रियलिस्टिकली प्रैक्टिकल टर्म्स में यू स्टिल बी एबल.
मेरे बैंकर्स, मैं भी किसी वक्त बैंकर होता था और मैं बैंकर दोस्त से मैं पूछता हूँ कि आपकी ये जो क्रेडिट रिस्क के बारे में बात करें, आप क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के बारे में बात, वो अभी क्या है? वो एटलीस्ट 20% है, उस पर आप कितना बोरोइंग कर सकते हैं? आपकी इंटरनेशनल लाइंस कितनी है? आप कितने जाके आप इंटरनेशनल बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं? कोशिश तो कर लें. तो आपकी क्या क्रेडिट लाइन है? तो आप तो बेसिकली योर इन एज गुड डिफॉल्ट सिचुएशन एज इज. आपकी कोई प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है डिस्पाइट बीइंग नाउ इन IMF प्रोग्राम. पिछले 6 महीने से, पिछले 1.5 साल से, पिछले 4 साल से वी हैव नॉट मैनेज टू रीओपन द इंटरनेशनल बोरोइंग लाइंस. So where are those credit lines? Those will not.
The private sector, जो importer exporter है, जो LCs खुलवाता है bank से, वो LCs affect होंगी इससे?
नहीं, क्यों क्यों अभी भी क्या हो रहा है? The LCs are being matched against the exports and remittances. Literally banks ये कर रहे हैं, जो exports और remittances हैं, जिसका वो inflow है, उसको offset कर रही हैं आपकी import से. So there is basically that they're acting like matchmakers. They really balance net it off. So aisa nahi hai ki further borrowing ho rahi hai international. Jo thodi bahut investment aa rahi hai wo World Bank and ADB se multilateral, that is not really that huge anyway. So could you imagine just for 2 or 3 billion from World Bank and IMF, ADB, we should penalize ourselves so much that we continue to have 2-3% growth. We don't take the opportunity of negotiating a very carefully structured debt restructuring. We do it in a, you know, considered way. Jaise Ghana ne kara, jaise Sri Lanka ne kara, other countries, Zambia has done it. This is not the first time that debt restructuring has happened. But if we don't do it, we are foregoing growth probably for another 5-10 years.
And then what does restructuring mean? Essentially, अगर अगेन मैं पावर सेक्टर की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि यार जो आपने 10 साल 10 साल में आपने वापसी रखी हुई है तो उसको आप 20 साल में कर दें. मतलब what would it look like? How will it actually reduce the cost potentially? कि यार जो मेरा 66 का यूनिट है उसको मैं किसी तरीके से 40 रुपए 35 रुपए पे ला सकता हूँ.
देखिए आप यू कैन गो टू एक दफा अहमद पीरज़ादा इज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट बेस्ड इन ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी. उसने बड़ी एक अच्छा पेपर लिखा है, डिफॉल्ट इंसेंटिवाइजिंग कोऑपरेशन बिटवीन क्रेडिटर्स. एंड ये मैं रिकमेंड करूंगा जो एकेडमिकली माइंडेड है और इसको डीप डाइव करना चाहते हैं प्लीज ये पेपर पढ़ें. उसमें लिखता है कि कैसे आप जो क्रेडिटर्स हैं, जब तक आप मोरेटोरियम नहीं, जब तक आप कहेगा कि डिफॉल्ट, वो आप पर टेबल पर नहीं आएंगे. व्हाट यू डू बाय सेइंग डिफॉल्ट, यू स्टार्ट गेटिंग द क्रेडिटर्स कमिंग एंड to the table and talking to you seriously. तो आपके बड़े different किस्म के इसमें solutions हैं. आप बात कर सकते हैं Chinese जो lenders हैं, वो उन्हें अभी श्रीलंका के साथ कराए, उन्हें haircut ले सकते हैं जिसमें आप जो अगर 20 billion है उसको 16 billion कर दें. मगर हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद ये होगा कि जो अभी जो crisis है और growth नहीं हो रही है, we should be said के आप ये कर लें कि आप कोई 4 साल के लिए ना 5 साल के लिए आप moratorium कर लें. There should be a deferment of any further payment for, and after that we can have a elongated period of payment. They might want to increase the interest rate on it. That's fine. The interest rates was never the problem. The problem was the debt schedule, the repayment schedule. So आप इस तरीके से डिफरेंट क्रेडिटर्स के साथ आप नेगोशिएट करेंगे, आइदर हेयर कट और डिफरमेंट ऑफ पेमेंट, डेट हॉलीडेज फॉर 5 years 10 years व्हाटएवर. बट दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. इट हैज टेकन श्रीलंका अबाउट 2 years, इट टेकन गाना अबाउट 2 years. इट डजंट हैपन इमीडिएटली. इट मींस द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक अ डिफिकल्ट टाइम. इट मींस द गवर्नमेंट विल हैव टू बी ऑनेस्ट विद द पीपल and say, okay, we will go through this difficult time. But once we have gone through this time, we have then given us ourselves an opportunity to grow. But also, what the creditor jo hai, jo jisne aapko lend kara, wo ek dafa aapko ye mauka dena chahta. They don't want you to come back after, jaise Argentina mein hua, debt rescheduling hua, phir se log 4 saal, 5 saal ke baad unke wasteful expenditure hua, phir se wo wapas gaye. That is what the international lender has learned. They don't want to see this, don't want to give you an opportunity to be wasteful again. They want you to do some real internal restructuring. Aise ki aapki jo internal borrowing hai jo ab koi 60 trillion par pahunch gayi aur us par koi 8.5-9 trillion aap interest pay kar rahe hain, usko aap dekhe kaise usko minimize kar sakte hain usme shayad real.
Let's talk about the local because Murtaza Sayyed sahab ka bada ek tweet aaya pichle dino jiske upar bade acche acche log pareshan ho gaye ki ye kya situation chal rahi hai where 65% of your entire government revenue is now going into paying interest on your debt. And usi ke saath, while that is happening, there's a lot more that the government is planning to take in this fiscal year as well. So clearly this is going to grow further. Aap jo local debt hai, jo ke bilkul, again, separately hum dekh rahe hain, jo Pakistan mein, Pakistani commercial bank se liya hua, jo local debt hai, us situation ko thoda sa explain karein. What does that look like? Why is that becoming a problem for Pakistan? And again, what's the solution there?
The simple problem is the fact that our government spending, both provincial and federal, is so much higher than the revenue collection, which goes back right to the beginning of the conversation. That your tax collection is very narrowly focused. Good sections of society, you don't broaden it. And then that tax collection is not enough. We need to have our debt to GDP is 9.5-10%. It needs to be at least 13-14%. If 14% hoti, to shayad hamare
debt to GDP, not debt to GDP.
Tax to GDP. Really, thanks for correcting me. Tax to GDP is around 9.5-10%. It needs to be about at least 13-14%. Ideally, probably more like 16-17%. Before we can have fiscal surpluses. If those fiscal surpluses will be, then you will spend. Now we have such a thing that what comes, we almost distribute it. 57% to provinces. The rest of the federal, after we spend on interest payments, we are actually in deficit. So virtually everything of your federal budget is used up in interest payments. You're left with nothing. So, jo hum log spending karte hain federal bureaucracy par, army par, diplomats par, various other, wo hum log borrow karke kharch karte hain. Wo borrow karke kharch karte hain. Aur wo borrowing jab karte hain, to naturally par hum log koi 7-8% of GDP last year koi 8.3% tha, wo hum log ko bank se borrow karna pad raha hai. हर साल हम लोग को उसके लिहाज से हमारी बोरिंग बढ़ती जा रही है तो अगर आप ये डेफिसिट
नेचुरल आउटकम अगर मैं आपसे पूछूं इफ वी डोंट डू एनीथिंग वी लेट द गवर्नमेंट डू व्हाट दे आर डूइंग व्हाट्स द नेचुरल आउटकम ऑफ समथिंग लाइक दिस व्हाट हैपेंस व्हेन कंट्रीज कीप ऑन डूइंग दिस
एट सम पॉइंट दे डिफॉल्ट एनीवे आई मीन इफ यू कांट बोरो इंटरनेशनली व्हिच वी कांट देन यू हैव टू कीप बोरोइंग फ्रॉम the banks locally, then you start effectively ballooning it. You can only borrow from the banks that much.
जो पाकिस्तानी है वो कह रहा है कि यार आप तो रुपया खुद प्रिंट कर सकते हैं तो what's the problem with
आप जरूर प्रिंट कर सकते हैं वो तो एक I think बड़े famous यहाँ के minister ने भी कहा था कि क्या problem है print कर देंगे पैसे print करिएगा तो आपके inflation will go through the roof which will cause its own problems so this is not sustainable we are hitting the wall anyway. And we this facility jo samajhte hain bade khush hote hain hum log ke IMF se IMF facility should be used to restructure the economy so that we don't have to go back after every 3 years hum log jo hai istemal karte hain IMF ki facility as a working capital not as a restructuring not to change the nature of the company but just to keep it going so we'll go back again I promise you the way we're going in next 3 years in 2027 we'll be back to IMF discussing our 25th program and we'll probably be stuck at around 0 to 1% ग्रोथ इविथ दिस. ये आपको मैं समझाना चाहूंगा कि अभी जो सिचुएशन है 3.5% जो अज्यूम कर रही है IMF ग्रोथ इस साल 24-25 में, उसमें अज्यूम कर रही है कि आपको प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट कोई और इन्वेस्टमेंट कोई $15 बिलियन आ जाएगा. अब पाकिस्तान के हिस्ट्री में इतना नहीं आया, सो दैट इज क्वाइट अनरियलिस्टिक. उनकी अजम्पशंस भी जो है वो जैसे अहमद पीरजादा साहब ने कहा मिरेकुलस अजम्पशंस है, कभी मिरेकल हो जाए तो ये. सो वी आर ऑलरेडी प्रॉब्ली, एंड ये अगर 15 बिलियन नहीं आता है देन वी विल प्रॉब्ली हैव अगेन वेरी लो ग्रोथ एंड प्रॉब्ली वी विल बी अगेन फेसिंग वेरी वेरी टाइट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ वेदर वी आर गोइंग टू डिफॉल्ट और नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट. So really, we are at the cusp of default. We just keep avoiding it. And this avoidance is...
conversation आती रहेगी, conversation वो आती रहेगी, जिसमें फिर से वो pressure पड़ेगा जो हमने last year होते हुए देखा.
और इसका side effect है, देखिए, economy is not an accounting exercise. And this is part of the problem in Pakistan. Our bureaucrats and our finance ministers who come from very often accounting or banking, they treat it as an accounting exercise. It's not an accounting exercise. इसमें फीडबैक लूप्स होते हैं. अगर आप ग्रोथ कम रखिएगा तो आपकी आईपीपी में जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो नहीं बढ़ती जाएंगी, आपकी डिफ्लेशन बढ़ती जाएगी, आपकी जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगी, इवन आपकी अगर इंपोर्ट्स नहीं बढ़ती गिवन दैट अ लॉट ऑफ योर रेवेन्यू कलेक्शन इज थ्रू द इंपोर्ट्स, आपकी रेवेन्यू कम होती जाएगी. सो सी दीज थिंग्स हैव फीडबैक लूप्स. इट्स नॉट इज अ क्वेश्चन के बस हमने सब कुछ बंद कर दिया हम ठीक हो जाएंगे. इनफैक्ट सब कुछ बंद करके शायद आप एक्सेलरेट करते हैं प्रोसेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ डायनेमिक प्रोसेस एंड यू कांट गो ऑन लाइक दिस. यू आर ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी एंड वी हैव बीन ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी फॉर द लास्ट 5 years नाउ एंड वी आर नॉट इम्प्रूविंग एंड दैट्स द प्रॉब्लम. वी नीड टू रियलाइज there is a fundamental structural problem. Oh, wo structural problem, and ye word istemal ho jata hai, main prefer karunga nahi istemal ho, magar basically ek aapki jo dhacha hai wo dhacha mein problem hai. Us dhache ko strengthen karna, theek karna hai, aur agar wo dhacha ko nahi theek karega to kisi na corrode hoti ja rahi hai usme bhusa lagta jaye wo collapse kar jayegi. I'm sorry, I'm not trying to be dramatic, but that's how I feel. And people come and kya samajhte hai economy. And unfortunately, I can never say ke bahut achhi lag rahi hai, koi baat nahi, fikir nahi karo. Aap dekhega isme, dekhe animal spirit bhi hoti hai. Pakistani, hum log jaate hain Saudi Arabia se 5 billion cha rahe hain, Emirates se 10 billion cha rahe hain, China se bheek mang rahe hain. Ke yaar, ye poocho ke wo ek to wo kehte hain wo aapko, aap to rehte hain wahan, wo yaar bada polite hai, wo kehta hai inshallah. Don't worry, वो कह भी देता है, मगर वो उसका मतलब जब वो करना चाहता है वो फौरन कर देता है, वो उसको आपको कोई वो बड़े तेज लोग हैं. तो अगर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो कुछ देख नहीं रहे ना इस मुल्क में. Because they really will only invest when they really feel कि पाकिस्तान में कुछ रखा हुआ है, इसकी नेचुरली ग्रोथ है. एक चीज है एक्सट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपने रिकोडेक में कहा गोल्ड निकाला उसको बेचा आपने आधे दाम के लिए आपने इफेक्टिवली खरीदा और आपने बेचा आपने प्रॉफिट. एक होती है आपने इकोनॉमी में इन्वेस्ट करा जहां आपकी टैलेंट आपकी स्किल्स उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ चीजें बनाएंगे बेचेंगे, वो कोई नहीं इन्वेस्ट कर रहा. एंड दैट विल नॉट हैपन अंटिल योर स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज चेंज्ड. एंड दैट इज व्हाट वी आर नॉट डूइंग. एंड इफ वी डोंट चेंज द स्ट्रक्चर वी विल बी स्टक इन दिस 0-2% ग्रोथ फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग. एंड That is unsustainable simply because आपकी population बढ़ती जाएगी and at some point you can have social upheaval and that is something which we haven't covered.
Do you think this is going to be my last question? Do you think there is a realistic chance for that social upheaval considering the fact that I feel like we're at the end of the road? I think there are a lot of crises hitting Pakistan simultaneously. There was a very interesting article by Adil. I don't know his full name. He's
Adil Malik, in fact, a good friend of mine.
Oxford University के जो प्रोफेसर हैं, जिन्होंने रिसेंटली वो पेपर पूरा लिखा है, he talks about the political economy, he talks about the economy as well, about how social media has come in and accelerated that change, and he talks about the power structures in Pakistan and you know how they're getting impacted. And the last couple of lines of his paper that sort of foretell a very scary picture of filled with violence and turbulence. Do you see something like that happening in Pakistan? Considering again, हमारे पास अब एक sense of direction तो आ गई ना इस government की with the budget, चाहे वो हम कहें कि यार वो ईवल है उन्होंने किया, चाहे वो हम कहें कि वो करप्ट है उन्होंने वो किया, कि चाहे वो कहें कि यार वो बेचारे लावारिस हैं, उनको इतना ज्यादा प्रेशर ग्रुप्स हर तरफ से खींच रहे हैं कि दे वर अनएबल टू क्रिएट द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट वर रिक्वायर्ड. आइदर और डू यू थिंक दिस कैन सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम गोइंग फॉरवर्ड?
दिस इन माय सिंपल हंबल ओपिनियन इज नॉट सस्टेनेबल. आप इसकी जो डिसरप्शंस हैं, बेसिक फ्रैक्चर्स इन सोसाइटी हैं, ब्रेकेज आप देखने लगे हैं, मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन डिफरेंट वेज. आपने आजाद कश्मीर में क्या करा? दे हैड अ सिंपल डिमांड, वो डिमांड नहीं मीट हुई, एंड अगेन इट वाज रिगार्डिंग पावर बिकॉज दे फील दैट दे प्रोड्यूस वेरी चीप पावर और उनसे बहुत ज्यादा चार्ज करा जा रहा है. दे went effectively on a path, war path. You know, we have to be careful of the word, but they basically said ke hum log nahi manenge, and gharao kara unne, kuch strikes bhi kare, and basically the government had to relent. Now this phenomenon could happen in other places. Jaise jaise mahangai badhegi, jaise jaise jobs nahi create hongi, jaise jaise unemployment badhegi, this is going to be, there'll be outbursts of such civil disobedience possible everywhere. Because of that, the government has to use
for different reasons and for different, like, wo to be very honest, wo religious bhi ho sakti hain, wo aur bhi ho sakti hain ki wo manifest apne aap ko different tarikon se kar rahi hain, but wo basically the lack of the hopelessness is basically manifesting in different ways.
It happens all across the society, and because of that aap coercive measures aur istemal karte hain, aap aur tighten up karte hain, uske wajah se aur bhi zyada वो रिएक्शन आता है. सो यू आर क्रिएटिंग नॉट अ हेल्दी एनवायरनमेंट, यू आर क्रिएटिंग अ सफोकेटिंग एनवायरनमेंट वेयर यू नीड टू यूज मोर एंड मोर कोएर्सिव मेजर्स टू सप्रेस द पीपल, एंड दैट कैन नेवर. एंड द अदर फैक्टर विच मुज़म्मिल यू शुड नोट, एंड दिस वाज़ जस्ट अ रिपोर्ट, पाकिस्तान हैज सीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैलेंट पूल लीविंग द कंट्री. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, एमबीए ग्रेजुएट्स, पीपल लाइक योरसेल्फ have been leaving the country in droves. Now that means hamari jo manufacturing production capacity, sales capacity, wo kam hoti ja rahi. So again, this is the feedback loop. The capacity of productivity in this country is coming down. So if your best talent leaves the country, we might say very good remittances are not the way to grow. The way to grow is to really increase your production capacity in the country, get productivity in your economy. वो नहीं हो रही. सो यस, आई थिंक व्हाट यू सेइंग, आई थिंक देयर इज, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मल्टीपल डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्रेकडाउन्स. दे मे नॉट ऑल हैपन एट द सेम टाइम, बट दे विल हैपन इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट टाइम्स, एंड देन गवर्नेंस बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट. द गवर्नेंस देन टेक्स टुवर्ड्स मोर एंड मोर कोएर्शन, रिप्रेशन, सप्रेशन. ऑल ऑफ दिस देन लीड्स टू इट्स ओन रिएक्शन. सो इट इज अ वेरी डार्क फ्यूचर this way, and I certainly hope this does not play out. You know, you and I are both patriots, we love this country, we love everything about this country. We certainly hope this is avoided, and that's why when we talk about having a concerted view about debt restructuring, about giving ourselves a chance to grow in the future, this is not with a view of creating chaos and creating disruption. It is actually to with a hope that we have further growth. Once we have given ourselves some space, once we have actually restructured not only the debt but also some of the spending, the way the economy functions, we try and integrate with the world, hamare tariffs kam kare ki hamari economy zyada competitive ho, hum log international investors jo hai yahan competitiveness ke wajah se hai, then we are giving our youth a hope, we are giving them a chance. If we don't do this, people will not stay static. Nothing remains, as we all know, nothing remains static.
Makes sense. I'm going to wrap this up. Main debt restructuring ki jo example hai na, wo main dena chahunga ki it's like aapke ghar mein aapke jo bacche hain wo drugs pe hain, heroin pe hain, aur aap usko rehab nahi bhejna chahte because mohalle walon ko pata lag jayega to wo hamari rating gira denge, aur jo bachcha hai wo jab jayega aur jaake drug se utrega to usko jo you know wo jo symptoms honge to usse usko dard bahut zyada hogi. But the fact is you have to sit down once and realize there is a problem, there is a drug problem. And B, you have to focus on that solution, even if it's disruptive in the shorter run. But aapko pata hai ki long term pe wahi ho sakta hai. So I feel like we are, as a society, as an economy, the first step is for us to really begin to realize there is something seriously wrong. And then, you know, change course, which is going to be painful in the shorter run. But as long as we do it in an educated way, hum logon ko bhi samjhaye ki yaar halaat tight ho rahe hain, lekin ye plan hai. मतलब आप ये नहीं कर सकते ना कि आपने टैक्स बढ़ा दिया, सारा कुछ कर दिया विदाउट गिविंग एनी प्लान व्हाटसो एवर एंड जस्ट सेइंग कि यार हम तो बैगर्स कांट बी चूजर्स. ऑब्वियसली दैट्स गोना क्रिएट रिजेंटमेंट. बट जावेद भाई, आई एम गोना रैप दिस अप. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन ऑन आवर फर्स्ट डिजिटल पॉडकास्ट. आई नो कि मैंने आपको थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट कराया स्टार्ट में जस्ट टू सेट दिस अप, बट यू हैव बीन एक्सट्रीमली काइंड.
थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर.
चले And I'm going to wrap this up for all of you guys. Thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन पाकिस्तान की इकोनॉमी. क्या आपको भी फ्यूचर इतना ही ब्लीक लग रहा है? क्या आपको, बल्कि इनफैक्ट जिन लोगों को नहीं लग रहा, जो कि शायद आके बोलेंगे यार आप लोग तो बस जो है ना नेगेटिव नैंसीज हैं, आप तो पोलिटिकली बस करंट हुकूमत के खिलाफ हैं. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. यू नो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ पर वो पॉजिटिविटी है. अगर आपको नजर आ रही है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में आके डिटेल में बताएं कि वाई डू यू थिंक you know, we're on the right path and what is the potential solution without taking drastic measures. I'd love to hear your thoughts. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Zabardast, Javed bhai, thank you.
You liked it? Was it all right? Was it easy to understand? That was my struggle always.
I think it was somewhere in the middle. I don't, the thing is,